हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग को बाहर गए हुए काफी टाइम हो चुका था। देर रात तक भी वो नहीं लौटा तो कृषा को उसकी फिक्र सताने लगी। कृषा के पास इस वक्त मोबाइल नहीं था जिससे वो युग को कॉल कर सके। उसे युग के बिना नींद भी नहीं आ रही थी। ऊपर से युग ने हरलीन के बारे में जो भी बताया था उसके बाद से उसके दिमाग में बार बार वही बातें सामने आ रही थी। कृषा के पास बात करने के लिए कोई नहीं था तो वो नीचे के फ्लोर पर पहुंची। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे जब कृषा हरलीन के कमरे के आगे खड़ी थी। वो अंदर जाने से पहले खुद से बोली, इतनी रात को बुआ के कमरे में जाना चाहिए या नहीं? वो सो गई होगी तो? ऐसा करती हूँ, सिर्फ 1 से 2 बार नॉक करूंगी। अगर बुआ जाग रही होगी तो दरवाज़ा खोल देगी, वरना मैं वापस ऊपर चली जाऊंगी। काफी देर सोचने के बाद कृषा ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। वो दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाने से पहले सोच रही थी तभी सामने से दरवाज़ा खुला। इतनी रात को कृषा को अपने कमरे के सामने देखकर हरलीन समझ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कृषा से कहा, युग नहीं आया है ना अभी तक? कृषा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, और लगता भी नहीं कि आज रात को आएगा वो। मुझे अकेले फ्लोर पर नींद नहीं आ रही थी। क्या मैं आपके रूम में आ सकती हूँ बुआ? अरे इसमें पूछना क्या, चलो आओ अंदर, हरलीन ने काफ़ी प्यार से कहा और फिर कृषा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। कृषा को कभी कभी हरलीन का बर्ताव देखकर हैरानी होती थी। पहले उसे पूरा सच नहीं पता था लेकिन वो ये ज़रूर जानती थी कि उसकी फैमिली की वजह से हरलीन ने काफ़ी कुछ झेला है। उसके बावजूद हरलीन उसके साथ काफ़ी प्यार से बर्ताव करती थी। लेकिन आज पूरा सच जानने के बाद कृषा को हरलीन के बर्ताव पर और भी हैरानी हो रही थी। हालांकि युग ने कृषा से इस बात के लिए मना किया था कि वो हरलीन के सामने कुछ ना कहे, फिर भी हरलीन को देखकर कृषा अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। वो हरलीन के गले लग गई, उसकी आंखें नम हो रही थीं। हरलीन ने कृषा को प्यार से सहलाते हुए कहा, तो उसने तुम्हें सब सच बता दिया है, गिल्ट फीस भरने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ उसमें तुम कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं थी। कृषा हरलीन से अलग हुई, उसने भारी आवाज में कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब की शुरुआत मेरी वजह से ही हुई थी। मैं पैदा होने वाली थी तभी आपकी शादी टूटी। हाँ हो सकता है तुम वजह रही होगी, पर तुम्हारे आने से ही सबकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। सोचो वरना उम्र भर मैं धोखे में रहती और मेरी लाइफ और भी ज़्यादा खराब हो जाती, हरलीन कृषा को समझा रही थी। कृषा हरलीन की गोद में सिर रखकर लेटी थी और वो प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। उसने कहा, तुमसे इस घर में किसी ने नफरत नहीं की। शांतनु के धोखे के बाद भी जब तुम पैदा हुई तब पापा जी बहुत खुश थे और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया था। आदित्य अंकल भी शांतनु और कृतिका को कभी माफ़ नहीं करते। उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा और उसके बाद अपना सारा गुस्सा भूल गए। सबने तुम्हें बहुत ही प्यार से पाला है। हाँ पता है मुझे, कृषा ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो कुछ पल रुककर हरलीन के चेहरे की तरफ देखकर बोली, आई लव यू बुआ। हरलीन ने कृषा का हाथ पकड़कर उस पर हल्के से किस किया। वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी इसलिए हरलीन ने बात बदलते हुए कहा, तुमने युग को कॉल नहीं किया? मिस कर रही हो ना उसे? हाँ मिस तो कर रही हूँ लेकिन कॉल नहीं किया, क्या पता कहाँ लगा होगा, कृषा ने जवाब दिया। हरलीन ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और युग को कॉल किया। युग समझ गया था कि इतनी रात को हरलीन का कॉल क्यों आया होगा। उसने कॉल रिसीव किया और उसे वीडियो कॉल पर स्विच कर दिया। हरलीन ने मोबाइल की स्क्रीन कृषा की तरफ कर दी जो इस वक्त उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। युग ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, ये गलत बात है कृष, तुमने मेरी जगह ले ली। ऐसा भी तो हो सकता है युग कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, कुछ ज़्यादा ही पैम्पर नहीं कर रखा तुमने अपनी वाइफ को, हरलीन ने मोबाइल स्क्रीन खुद की तरफ करके कहा। उसकी बात सुनकर कृषा के गाल लाल हो रहे थे। युग ने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है नहीं बुआ, ऑफ कोर्स आपने मेरी जगह ले ली, मैं किसी काम के चलते 1-2 दिन बाहर ही रहूंगा, तब तक कृष आपके पास रह लेगी। थोड़ी देर बात करने के बाद युग ने कॉल कट कर दिया था। कृषा को उससे और भी बात करनी थी लेकिन वो हरलीन के सामने और कुछ नहीं कह पाई। कुछ ही देर में कृषा और हरलीन दोनों ही सो चुके थे। अगली सुबह युग उठा और तैयार होकर नीचे पहुंचा। वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी मलिक उसके पास पहुंचा। रात को युग ने उसे जो काम दिया था वो उसने कर दिया था। उसके हाथ में कुछ प्लास्टिक फिंगर्स थीं जिसके ऊपर वरदान राणा के हर एक फिंगर का प्रिंट था। उन्हें देखते ही युग ईविल स्माइल करते हुए बोला, चलो वरदान राणा के घर पर चलते हैं, उसकी फैमिली में उसके अलावा उस घर में कोई नहीं रहता है। सुना है वरदान राणा ने अपना ज्यादातर टाइम वहीं पर बिताया है और जब भी वो वहां नहीं होता था तब भी बंगले में चहल पहल रहती थी। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके बाद वो दोनों वरदान के बंगले के लिए निकले। उनके साथ उनके कुछ आदमी भी थे जो पीछे किसी गाड़ी में आ रहे थे। वरदान राणा के घर पर उसकी एब्सेंस में कुछ गार्ड्स और हाउस हेल्पिंग स्टाफ ही मौजूद थे। उन पर काबू पाना युग के लिए काफी आसान था। युग के आदमियों ने उन सबको गन पॉइंट पर ले रखा था और युग उसकी फिंगरप्रिंट्स वाली उंगलियों से काफी सारे लॉक अनलॉक करके अंदर की तरफ जा रहा था। वरदान के घर आने पर युग सबसे पहले उसके कमरे में गया। वो जानता था कि उसके कमरे में जरूर कोई सीक्रेट रूम बना होगा। थोड़ी देर उथल पुथल करने के बाद युग को वो सीक्रेट रूम मिल गया था। उसने वरदान के फिंगरप्रिंट से उस रूम को अनलॉक किया जहां पर 7ों पड़ावों के नक्शे हाथ से बने हुए थे। हालांकि वो इतने एक्यूरेट नहीं थे लेकिन फिर भी उनके आसपास की जगह को टारगेट किया गया था।
उन्हें देखने के बाद योग हैरानी से बोला, लगता है काफी डेडिकेशन दिया है इसने माफिया किंग बनने के पीछे, पर अफसोस इसे कुछ नहीं मिला। इन सब के बारे में इतना सटीक अंदाजा उसने कैसे लगाया होगा? नीचे तहखाना भी है, वहां काफी सारे क्रिमिनल भी हो सकते हैं, आप चाहें तो हम वहां जा सकते हैं, मलिक बोला। युग ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, वैसे तो मुझे दूसरों की जेल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी लेट मी सी कि वरदान राणा कैसे टॉर्चर करता था, हो सकता है उसका तरीका उस पर काम आए। युग उसके बाद उस जगह से नीचे तहखाने में पहुंचा। ये एक अंडरग्राउंड एरिया था। ऊपर का घर जितना स्टाइलिश और मॉडर्न बनाया हुआ था, वो तहखाना उतना ही पुराने जमाने का लग रहा था। वहां की ठीक से मरम्मत भी नहीं हुई थी और सीलन की बदबू आ रही थी। योग मलिक के साथ आगे आगे बढ़ रहा था। वहां काफी सारे लोगों को बांध कर रखा हुआ था। सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया था, बस बाहर दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। योग और मलिक उसे तोड़कर अंदर आए थे। अंदर से दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई खिड़की थी जिसके चलते से कोई वहां से भाग सके। वेंटिलेशन ना होने की वजह से वहां दो मिनट भी रहना मुश्किल हो रहा था। हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं रखा है। वैसे भी ये जगह इतनी खस्ता हालत में है कि यहाँ रहना ही सबसे बड़ा टॉर्चर है, मलिक ने अपनी नाक पर हाथ रखकर कहा।
युग को भी वहाँ आगे कुछ देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी उसने ज्यादातर लोगों को देख लिया था। ज्यादातर लोग वो थे जो वरदान राणा के काम के बीच में आए थे। वहां से चलते हुए अचानक युग की नज़र आखिरी जेल पर गई। वो तेज कदमों से उस तरफ गया और वहां बंधे हुए कैदी को देखा। वो उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उस जगह में रहने की वजह से वो उम्र में 65 के करीब लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी टाइम से वहीं पर हो। उसकी दाढ़ी काफी लंबी हो गई थी और सर के बाल भी बढ़ गए थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे। युग उसे गौर से देख रहा था। अचानक उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, शांतनु सिंघानिया।